ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको याद होगा कई सप्ताह पहले श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध से चर्चा चल रही थी। विषय ये था महाराज निमि का संवाद नव योगेंद्रों के साथ। तो उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे। महाराज निमि, जैसे आपको पता है, बहुत महान राजा थे, राज ऋषि थे, और नव योगेंद्र भी बहुत महान भक्त थे, ऋषि थे। नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव के पुत्र थे, नौ थे, और चतुष्कुमारों की तरह है, नारद मुनि की तरह है, नव योगेंद्र आज भी सब जगह भ्रमण करते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में, और उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि कैसे लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाना है। भक्ति का प्रचार करने हेतु ये सब जगह भ्रमण करते हैं। तो ऐसे अपने भ्रमण के दौरान वो पहुंचे महाराज निमि के यहाँ। महाराज निमि ने उनका हार्दिक स्वागत किया, बड़े आदर सत्कार से मीठे शब्द बोले और ज्यादा समय न गंवाकर सीधे काम की बात पर पहुंचे। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए काम की बात अलग अलग होती है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके पास जाइए फिर वो कहेंगे समय बर्बाद नहीं कीजिए, काम की बात कीजिए, कितना पैसा होगा मिलेगा बताइए। ऐसे व्यक्तियों से आप मिले होंगे, ये इनकी बातें सुनी होंगी, उनके लिए पैसा ही समय, समय ही पैसा है। तो हर एक क्षण उनके लिए पैसे से महत्व रखता है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग होती है कि काम की बात क्या है। अक्सर वो काम की बात ही होती है। काम के अनेक अर्थ हो सकते हैं, काम मतलब कार्य, और काम का ये भी शब्द हो सकता है जो कि भौतिक इच्छा, इसको भी काम कहते हैं। तो दुनिया में जिस चीज को लोग काम की बात कहते हैं वो वास्तव में काम की बात ही है, परंतु सच्चे काम की बात नहीं है, जो कि भक्त लोग जानते हैं। तो भक्तों के लिए सच्चा काम क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो महाराज निमि अच्छी तरह से जानते हैं कि संतों का संग बहुत दुर्लभ होता है, विरला ही प्राप्त होता है, और वैसे भी जब संत आते हैं थोड़े समय के लिए ही रहते हैं और फिर निकल जाते हैं, दूसरी जगह कहीं प्रचार करने चले जाते हैं। इसलिए जब तक हैं चलो पूरा फायदा उठाना चाहिए, और इधर उधर की बातें न करके सीधे चलो आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न करने चाहिए। तो महाराज निमि ने सबसे पहले प्रश्न किए, वैसे 9 प्रश्न किए उन्होंने, और नव योगेंद्रों में से हर एक योगेंद्र ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। ऐसे नव योगेंद्र और महाराज निमि के बीच में जो संवाद हुए उनमें 9 प्रश्न थे। इस संवाद को जायंतेय गीता भी कहा जाता है। आपको पता है तरह तरह की गीता हैं, सबसे प्रसिद्ध गीता है भगवद गीता, फिर है 11वें स्कंद में ही उद्धव गीता, फिर आयल गीता, भूमि गीता, ऐसे भागवत में है कितने सारे गीताएं हैं, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, बहुत सारे गीत हैं। हालांकि ये प्रार्थनाएं हैं या स्तुतियां हैं या तो संवाद है, तो इनको गीत क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो बहुत मधुर होते हैं। जब इस वाणी को हम सुनते हैं और समझते हैं तो जीवन में सच्चा जो माधुर्य है उसका पता चल जाता है। तो नव योगेंद्रों को जायंतेय भी कहा जाता है, इसलिए जायंतेय गीता। तो खैर, अब ये जायंतेय गीता में भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो था वो ये कि ये भागवत धर्म क्या है? सबसे ऊंचे जो कल्याण की बात है लोगों के लिए वो क्या है? और इस विषय पर हम चर्चा कर चुके थे। जो उत्तर महाराज निमि को नव योगेंद्रों ने दिया, ठीक नहीं, एक बार पहले जैसे था जो उत्तर नव योगेंद्रों ने महाराज निमि को दिया, संक्षेप में उसकी चर्चा हम उस रविवार को कर चुके थे। सार ये है कि नव योगेंद्र बताते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए बस। और ये भागवत धर्म, जिस धर्म का उल्लेख या जिस धर्म का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान ने स्वयं किया है, वो भक्ति मार्ग है। भगवान के आश्रय को स्वीकार करके उनकी शुद्ध भक्ति करना, यही भागवत धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तरह तरह के धर्म होते हैं जगत में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वो भेद कर रहे हैं दो प्रकार के धर्मों में। वैसे धर्म तो हैं अनगिनत प्रकार के, हर एक व्यक्ति अपने अपने मनमाने ढंग से कोई नए धर्म का आविष्कार करता है। तो धर्म केवल दो प्रकार के होते हैं, एक भागवत धर्म अर्थात भक्ति, जिसमें हम भगवान के शरण को ग्रहण करके उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण यहां करते हैं, माम एकम शरणम व्रज, यह एक प्रकार का धर्म। और इससे अतिरिक्त जितने भी और धर्म हैं, चाहे वो वेदों में वर्णित हो या न हो, वो सब ऐसे धर्म है जिनको हमें त्यागना चाहिए, त्यागने योग्य धर्म है ये। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो केवल भक्ति या भागवत धर्म एक ओर, ये एक प्रकार का धर्म जो सच्चा धर्म है, और दूसरे जितने भी प्रकार के धर्म हैं वो कैटव धर्म कहलाते हैं, धोखे बाजी के धर्म, सच्चे धर्म नहीं होते हैं। भले उनका वर्णन वेदों में हो जैसे कर्मकांड आदि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष नव योगेंद्र ने दिया है। और फिर दूसरा प्रश्न आता है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, आज केवल इस प्रश्न की चर्चा ही कर पाएंगे, वो भी पूरी तरह से चर्चा हो पाएगी नहीं पता नहीं। खैर, वो प्रश्न करते हैं, अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति तद्ब्रूते ये लिंगेर भगवत प्रियः। वो चाहते हैं पूछने के लिए, भागवत धर्म का वर्णन तो आपने किया, अब हम उन भागवतों के बारे में पूछना चाहते हैं। भागवत कई प्रकार के होते हैं, एक है पुस्तक श्रीमद् भागवत, दूसरा है व्यक्ति भागवत, जो भगवान की भक्ति करता है, जो चलता फिरता भागवत ग्रंथ है, उसे भी भागवत कहते हैं। तो ये भागवत धर्म का पालन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें भी भागवत कहते हैं। भागवत धर्म अर्थात भगवान से संबंधित जो धर्म है, उसी प्रकार से भगवान से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको भी भागवत कहते हैं। भगवान से संबंधित पुस्तक है उसे भी भागवत कहते हैं, भगवत से भागवत। तो भागवतों के बारे में, भक्तों के बारे में अब पूछताछ करना चाहते हैं महाराज निमि, क्योंकि भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये तो बता चुके हैं नव योगेंद्र। अब वो जानना चाहते हैं कि जो भागवत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके धार्मिक कार्य कौन से होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है, उनका आचरण कैसे होता है, और उनके लक्षण कैसे होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये भक्त है, और कितने प्रकार के भक्त होते हैं, ये भक्तों की श्रेणियां कैसी होती हैं। तो ये प्रश्न है भागवतों के बारे में, भक्तों के बारे में महाराज निमि का, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि भक्तों के संग में आके कोई व्यक्ति कहता है, अरे उस भक्त ने ऐसे किया, इस भक्त ने ऐसे किया, तो वो आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सभी भक्त एक प्रकार के होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य विविध प्रकार के होते हैं, वैसे भक्त भी विविध प्रकार के होते हैं। एक सार आपको बताएं, चैतन्य महाप्रभु के पास, जबकि वो जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे, उनके कई बंगाल से भक्त आए थे। तो जाने के पहले उन भक्तों ने पूछा, उनके उनमें से सबसे जो प्रमुख भक्त थे उनका नाम था सत्यराज खान। तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि क्या आदेश है आपसे। तो महाप्रभु ने कई आदेश दिए, उनमें से आदेश ये था कि सदैव भक्तों का संग करो और भक्तों की सेवा करो, नाम संकीर्तन करो, और भी आदेश दिए। परंतु जब ये आदेश उनको मिला कि भक्तों का संग करो और भक्तों की सेवा करो, तो सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव कौन है? आप कह रहे हैं कि वैष्णवों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु प्रश्न ये उठता है कि वैष्णव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल उत्तर दिया, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया हो वो वैष्णव है। ठीक है, वो चले गए। अगले साल चातुर्मास में फिर से आए जगन्नाथपुरी भगवान का, महाप्रभु का संग करने के लिए। और जब जगन्नाथपुरी छोड़कर चार महीने के बाद पुनः अपने अपने गांव में जा रहे थे सब, फिर से सत्यराज खान ने ये प्रश्न पूछे कि क्या आदेश है आपके? तो महाप्रभु ने फिर वही उत्तर दिया, वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों का संग करो। फिर से सत्यराज खान ने उनको पूछा, वैष्णव कौन होता है? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, जो सतत हमेशा भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। तो वो चले गए। तीसरे साल फिर से सारे भक्त उस गांव से चातुर्मास के समय आए, और चार महीने बिताकर फिर जब लौटने का समय आया, तो सत्यराज खान ने फिर से प्रश्न पूछे। महाप्रभु ने वही कहा, वैष्णवों का संग करो, वैष्णवों की सेवा करो। फिर से ये प्रश्न आया कि वैष्णव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैष्णव वो है जिसको देखने मात्र से हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकलता है। तो तीनों बार प्रश्न एक ही था कि वैष्णव कौन है, और तीनों बार एक ही प्रश्न के लिए उत्तर अलग अलग थे। पहली बार उत्तर क्या था कि वैष्णव कौन है? ये एक बार कृष्ण का नाम लेता है, किसी ने कृष्ण कह दिया तो वैष्णव। दूसरी बार कहा, जो सतत कृष्ण का नाम लेता है, 24 घंटे कृष्ण 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 कहता है, वो वैष्णव है। और तीसरी बार क्या कहा? जिसको देखने पर, केवल देखने से हमारे मुख में कृष्ण का नाम निकलता है, ये वैष्णव है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे अलग अलग उत्तर क्यों दिए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बतलाना चाहते थे कि सारे वैष्णव एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे इस दृष्टि से होते हैं कि वो सब कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं, परंतु अंतर उनमें है। जैसे कि एक पाठशाला में जाएंगे तो वहां एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी, क्या है? समानता है सारे बच्चों में। क्या समानता है? सब विद्यार्थी हैं। फिर भी अंतर है कि नहीं है? है। पहली कक्षा में कोई पढ़ते हैं, कोई चौथी में, कोई सातवीं में, कोई दसवीं में। तो जो पहली कक्षा में पढ़ते हैं और जो दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है ना? अंतर तो बहुत है, फिर भी हैं एक समान विद्यार्थी। पहली कक्षा के बच्चे को भी विद्यार्थी कहते हैं दसवीं कक्षा के बच्चे को भी विद्यार्थी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम लिया है वो वैष्णव है, जो बार बार नाम लेता है वो भी वैष्णव है, जो 24 घंटे नाम लेता है भगवान का वो भी वैष्णव है, और जो इतना शुद्ध है उसमें इतना कृष्ण प्रेम है कि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर तुरंत कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण का नाम ले, वो भी वैष्णव है, वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। तो चैतन्य महाप्रभु बतलाना चाहते थे कि ऐसे वैष्णवों की श्रेणियां होती हैं, और वैष्णवों में अंतर भी देखना चाहिए, वैष्णवों में समानता तो जाननी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, समान और सम्मान ये ध्यान रखना चाहिए। सब समान हैं क्योंकि सब वैष्णव हैं, और सबको सम्मान भी करना चाहिए, फिर भी थोड़ा भेद भी करना चाहिए। तो वैष्णव वो होता है जो जानता है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वैष्णव अंधा नहीं होता। एक दृष्टि से ऐसा नहीं है कि वो महाभागवत के दृष्टि की नकल करके सभी लोग भक्त है करके शेर को भी आलिंगन करता, ये भी भगवान का अंश है। जो नास्तिक है, जो भगवान के विरोध करता है उसको भी जाके आलिंगन करे, चलो आ बैल मुझे मार, नहीं। दूसरी ओर ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भावुक होकर या क्रोध में आकर सबका विरोध करता है, नहीं। हम केवल जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ में रंग, इसके अतिरिक्त हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। तो भक्तों को चाहिए कि वो भेद भी करे। बुद्धिमान भक्त वो होता है जिसे पता होता है कि सम्मान सबको देते हुए भी किसे कितना सम्मान देना चाहिए। संशय है तो अधिक सम्मान दे दीजिए अधिक सम्मान देना अच्छा है, भले कि हम कम सम्मान दें किसी को। अधिक सम्मान देने में नुकसान कम है, नुकसान ही नहीं है। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि वो जाने कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो वैष्णव के नाप तोल में, मापदंड में जो है, जब विश्लेषण कर रहे होते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। एक कि उसकी श्रद्धा कितनी है भगवान में, शास्त्रों में श्रद्धा कितनी है, जानकारी कितनी है। दूसरी कि उसका व्यवहार कैसे है, उसका आचरण किस तरह से होता है। तीसरा कि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कितना है। अलग अलग दृष्टि से हम वैष्णवों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इन सब अलग अलग दृष्टिकोणों में संबंध भी है। यदि किसी का कृष्ण प्रेम बहुत तीव्र है तो उसका व्यवहार भी एक जैसे होगा, एक तरह का होगा। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम कम है उसका व्यवहार अलग होगा, उसकी श्रद्धा भी अलग होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जो एक बार नाम लेता है वो एक कनिष्ठ भक्त कहलाता है। कनिष्ठ अर्थात जो नौ सुखिया है, और जो बार बार नाम लेता है वो मध्यम वर्ग का या मध्यम स्तर का भक्त होता है, और जो इतना शुद्ध है, जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से इतना भरा हुआ है कि उसको देखकर ही लोग भक्त बन जाते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कहलाता है। तो जब ये प्रश्न भागवतों के बारे में या भक्तों के बारे में महाराज निमी नवयुगेंद्र से करते हैं, तो अब नवयुगेंद्र में से जो दूसरे योगेंद्र है जिनका नाम है हवि, वो उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया था कवि नाम के योगेंद्र ने, अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हवि, कवि और हवि। तो सबसे पहले वो वर्णन करते हैं उस महाभागवत का, सर्वश्रेष्ठ भागवत, इसके बाद में बाद वाले श्लोक पर वर्णन करेंगे मध्यम वर्ग के भक्त का, और उसके बाद में वर्णन करेंगे कनिष्ठ भक्त का। महाभागवत या उत्तम भागवत, फिर मध्यम भागवत और कनिष्ठ भागवत। तो जब वो मध्यम या क्षमा कीजिए उत्तम भागवत की चर्चा करते हैं सर्वप्रथम, तो वो कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। एष ऐसा है भागवत उत्तमः, जो उत्तम भागवत है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् कि सब व्यक्तियों में और सब वस्तुओं में वो भगवान को देखता है, और भगवान में सबको देखता है, ये उसकी दृष्टि होती है। हर व्यक्ति में हर वस्तु में भगवान को देखता है, और भगवान में हर वस्तु और हर व्यक्ति को देखता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, ऐसी दृष्टि कितने लोगों को होती है? बहुत कम। तो इसलिए ये भागवत उत्तम कहलाता है, उत्तम भागवत। और वो समझता है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, भगवान और उनकी शक्तियां, ये दो श्रेणियां हैं, भगवान और भगवान की शक्तियां, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भगवद गीता में भी भगवान यही बताते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ा हुआ है, जिसकी दृष्टि प्रथम श्रेणी की होती है, वो सब जगह मुझको देखता है, हर चीज को मुझमें देखता है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं उसके साथ में रहता हूं। तो भगवान ऐसे दृष्टि की बात करते हैं। देखिए हर चीज दृष्टि की बात है। जब हम दृष्टि की बात करते हैं, हम केवल इन स्थूल आंखों की बात नहीं करते कि किसके पास चश्मा है, ऐनक है, किसके पास नहीं है, हम आध्यात्मिक दृष्टि की बात करते हैं। जैसे किसी को ऐनक की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके स्थूल आंखें जो है कमजोर होती हैं, किसी की आंखें जो है वो अच्छी होती है, तेज दृष्टि होती है, अंतर होता है लोगों के शारीरिक आंखों में, ठीक उसी प्रकार से लोगों के आध्यात्मिक आंखों में, दिव्य चक्षु में भी अंतर होता है। कोई लोग होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हैं बिल्कुल, और कोई होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है, वो उत्तम भागवत कहलाते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि सब जगह भगवान और भगवान की शक्ति है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, भगवान की शक्ति है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इससे शायद किसी के मन में ये गलत फहमी हो जाए कि जब ये कहा जाता है कि ऐसा महान भागवत सब जगह भगवान को देखता है, तो क्या ये भगवान का रूप देखता है कि भगवान 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 ऐसे देखता है? कैसे देखता है? एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि जब ये कहा जाता है कि भगवान का शुद्ध भक्त सब जगह भगवान को देखता है, तो उसका क्या मतलब है कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, खड़े हैं, एक रूप देख रहे हैं, फिर उनके पास में लगते ही ये रूप समाप्त हो तो दूसरा कृष्ण, तीसरा कृष्ण, ऐसे अनगिनत कृष्ण को देखते हैं क्या सब जगह? तो वो रूप भगवान का कितना बड़ा होता है? ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी आया होगा कई बार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं है, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हर क्षण ऐसा शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करता है, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसे होता तो ये भी कहा जा सकता था कि नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, वो भी महाभागवत नहीं है। जब ऐसे कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण की शक्ति है, और जहां भी कुछ देखते हैं कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की याद उनको आती है, हर चीज को देखते हैं, एक सुंदर फूल को देखते हैं, जैसे यहां सुंदर पोस्टर है, यहां हमारे यहां देखिए, एक फूल है, प्रभुपाद जी की वाणी, एक सुंदर फूल है, तो जिसकी दृष्टि भौतिक है वो देखेगा फूल है सुंदर है, परंतु जो भक्त है वो सोचेगा कि ये फूल कितना सुंदर है, इसका मतलब है कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, भगवान की कलाकारी कैसी है, कितना सुंदर चित्रकार है भगवान, कलाकार है कि उन्होंने ऐसे सुंदर पुष्प बनाया है, तो ऐसे फूल को देखकर तुरंत फूल को बनाने वाले का स्मरण वो करता है, और उसका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाता है कि देखो भगवान ने कितना सुंदर, कितनी सुंदर तरह से ये सृष्टि की रचना की है। तो ये है महाभागवत, जहां भी देखता है उसको कृष्ण का ही स्मरण आता है, क्योंकि वो सृष्टि और भगवान में भिन्नता नहीं देखता, वो समझता कि सृष्टि भी भगवान से ही आ रही है, भगवान का संबंध जो है वो सृष्टि से बहुत घनिष्ठ होता है, बहुत गहरा होता है। जिस तरह से एक लोभी व्यक्ति सब जगह पैसा ही देखता है, कई बार ऐसे व्यक्ति के सामने कहते हैं कि इसकी आंखों में केवल रुपए 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 लिखा हुआ है, इसकी आंखों में बाकी नहीं, रुपए रुपए रुपए, आंखों को खोल के देखिए तो रुपए रुपए रुपए, ऐसे कहने का मतलब है कि वो बहुत लोभी होता है, हर चीज में पैसा ही देखता है, उसके संबंध भी वैसे होते हैं, पैसे पैसे पैसे, अपने निकट के जो परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति भी बस पैसे से ही देखता है उस, तो उसकी दृष्टि वैसे रहती है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि प्रेम से भरी होती है, भगवत दृष्टि होती है, इसलिए सब जगह भगवान का संबंध ही देखते हैं, वो नास्तिक को देखकर भी उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण आएगा, देखो भगवान ने कैसे उसको बुद्धि दी कि भगवान को ही नकारने लगा है। तो किसी न किसी तरह से घूम फिर कर व्यक्ति जो है वो भगवान का ही स्मरण करेगा। प्रभुपाद जी ने एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, उनके मेज पर उनका ऐनक पड़ा था, उनका चश्मा, तो प्रभुपाद जी ने एक शिष्य से पूछा कि ये क्या देख रहे हो, तो शिष्य ने उत्तर दिया कि मैं चश्मा देख रहा हूं। तो ये अब चश्मा देख रहे हो तो क्या स्मरण हो रहा है, तो आपका स्मरण होता है प्रभुपाद। क्यों, मेरा स्मरण क्यों हो रहा है, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, चश्मा को देख रहे हो, तो चश्मे को देखकर मेरा स्मरण कैसे हो रहा है तुम्हें। तो उस भक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ये आपका चश्मा है। सही है ना, जैसे एक मां अपने बच्चे के खिलौने को देखकर किसको याद करती है, बच्चे को याद करती है, ठीक उसी तरह से जो भक्त होता है जब भी किसी भी चीज को देखता है किसे याद करता है, कृष्ण को याद करता है। जैसे भक्त ने चश्मे को देखकर सोचा कि ये प्रभुपाद जी का चश्मा है, तुरंत मालिक कौन है, ये किनका है, वो संबंध तुरंत देख लिया और प्रभुपाद का स्मरण किया, तो चश्मे को देखते देखते वास्तव में वो प्रभुपाद को देख रहा था। आप समझ रहे हैं इस बात को, बाह्य रूप तो देख रहा था परंतु बाह्य रूप देखते हुए भी वो वास्तव में भगवान का दर्शन कर रहा था, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहा था। इसलिए यहां पे बताते हैं नवयोगेंद्र महाराज श्री हवि कि ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बहुत विशेष होती है, इसलिए उसको उत्तम भागवत कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, कि भले जो शुद्ध भक्त होता है वो विभिन्न रूपों को देखता है, ये पेड़ है, ये पशु है, ये मनुष्य है, परंतु ऐसे रूपों को देखते हुए भी वो नहीं देखता, देखते हुए भी वो जानता है कि ये भगवान की संपत्ति है, इसलिए वो भगवान का स्मरण करता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। फिर भी हमें ये भी एक जान लेना चाहिए कि बौद्धिक दृष्टि से इस बात को जानने से हम महाभागवत नहीं बनते, केवल बुद्धि से। आज हमने प्रवचन में सुना कि सब जगह भी भगवान की शक्ति है, इसलिए हर चीज को देखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो मैं अब पेड़ को देख रहा हूं, जान रहा हूं ये पेड़ भगवान ने बनाया, तो मैं महाभागवत हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सोच सकते। हमें जानना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से ये दृष्टि कब आएगी? जब प्रेम है। जैसे मां का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, इसलिए सब जगह अपने बच्चे के लक्षण ही देखती है, उसी तरह से जिसके हृदय में प्रेम होता है भगवान के प्रति, तो वो हर चीज का संबंध भगवान से देखेगा। तो हमारे अवस्था में जब वो शुद्ध प्रेम नहीं है, हम अभ्यास करते हैं वो संबंध जोड़ने के लिए, कभी संबंध जोड़ते हैं कभी भूल जाते हैं। मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं? हम उस संबंध को बनाए रखने के लिए, उस चेतना को शुद्ध करने के लिए, जिसके कारण, जिसके फल स्वरूप हम ये संबंध को हमेशा बनाए रख पाए। जब मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, तुरंत भगवान का संबंध हो जाता है, भगवान की वाणी सुनते हैं, तुरंत संबंध लग जाता है। परंतु अभी परिपक्वता उतनी नहीं आई है, इसलिए भागवत प्रवचन सुनते सुनते भी ध्यान कहीं दूसरी जगह हट जाता है। कल टीवी में कौन सा कार्यक्रम देख रहे थे, वो गाना बड़ा अच्छा था, और वो क्या कार्यक्रम था, तो संबंध तुरंत टूट जाता है भगवान के साथ। मंदिर में भक्तों के संग में बैठे हुए भी, प्रवचन सुनते सुनते भी ये संबंध टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी तरह से प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं हुआ है। परंतु ऐसे बार बार अभ्यास करने से, भक्तों के संग में बार बार आने से, फिर हम मन को आदत दिला देते हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते जाता है। फिर भगवान का संबंध सब जगह दिखाई पड़ता है। जब कोई कठिनाई आती है हमारे जीवन में, दुख आता है, तब भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उस समय फिर हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में वास्तव में अभी प्रगति कर रहे हैं। तो इस तरह से जो महाभागवत होते हैं उनकी दृष्टि ऐसे होती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और सुंदर बात बताते हैं कि जब ये बताया जाता है कि महाभागवत की दृष्टि ऐसी होती है कि वो हर चीज का संबंध कृष्ण से देखता है, ये आवश्यक नहीं है कि कृष्ण का रूप सब जगह देखे, वो एक और दूसरे लक्षण बताते हैं या दूसरी बात बताते हैं इसके बारे में। वो ये है कि महाभागवत केवल वो नहीं है जो 2400 घंटे भगवान का रूप देखता है, परंतु महाभागवत वो है जिसके हृदय में इतना प्रेम है कि वो इस योग्य है कि वो भगवान के रूप का दर्शन करे। आप समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान उसके सामने प्रकट हो जाए कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं प्रकट हो चुका हूं तुम्हारे सामने। ये महाभागवत का दूसरा लक्षण है कि उसका हृदय इतना शुद्ध हो चुका है कि भगवान उसके सामने आएंगे और कभी आ सकते हैं दर्शन देने के लिए। भगवान किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के सामने नहीं आते। हाँ, जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, लीला करते हैं, जैसे 5000 वर्ष पूर्व आए, तब वो ऐसी कृपा करते हैं, परंतु हर समय ऐसे नहीं करते हैं। तो महाभागवत वो होते हैं जिनके हृदय में इतना प्रेम रहता है भगवान के प्रति कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कभी कभी, जैसे सुखदेव गोस्वामी के सामने हुए या नारद जी के सामने होते हैं कभी कभी। नारद कभी कभी भगवान का दर्शन करने वैकुंठ जाते हैं और प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सामने भगवान का रूप रहता है उनका। परंतु इस योग्य नारद मुनि हैं कि वो कभी भी वैकुंठ में जा सकते हैं और आमने सामने भगवान को देख सकते हैं। तो ये महाभागवत की पहचान है, उत्तम भागवत। और उत्तम भागवत जो होता है उसकी दृष्टि ऐसे होने के कारण वो भेद नहीं करता, सभी लोग भक्त हैं मेरे सिवाय, सब भगवान की शक्ति, सब ठीक ठाक ही चल रहा है, सब भगवान की योजना से चल रहा है, ऐसे उनकी दृष्टि होती है। इसलिए जो अन्य भक्त होते हैं उन्हें ऐसे नकल नहीं करनी चाहिए, अन्य जो भक्त होते हैं उनको भेद करना चाहिए। महाभागवत जो होते हैं वो भेद नहीं करते, परंतु अन्य जो होते हैं उनको भेद करना चाहिए। दो चीजें हैं, उद्धव का नाम आप सबने सुना है। उद्धव इतना शुद्ध भक्त था कि वो दुर्योधन को आके भी प्रणाम करता था, क्योंकि वो उसकी दृष्टि ऐसी थी सब भगवान के भक्त हैं, केवल मैं भक्त नहीं हूं। दुर्योधन के सामने भी आके प्रणाम, आप बहुत महान हैं दुर्योधन। तो आचार्यों ने हमें चेतावनी दी कि आप ऐसे नहीं करना, ये उद्धव की नकल नहीं करना, दुष्ट व्यक्तियों के सामने आप ही भगवान जैसे हैं, उसका तो अहंकार और भी बढ़ जाएगा, वो और भी भगवान से दूर चले जाएगा। हमें भेद करना चाहिए, दुष्टों से दूर ही रहना चाहिए। और एक बात कि यदि कोई दुष्ट है, ठीक है, उसके सामने जाके प्रणाम तो नहीं करना चाहिए, और हमें समझना भी चाहिए कि इस ये व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, इससे संग नहीं करना चाहिए, ये भक्त है इससे ज्यादा संग करना चाहिए, ये भेद हमें करना चाहिए। इसलिए जब अब श्री हवि मध्यम भागवत का वर्णन करेंगे तो इसमें वो भेद करेंगे कि कैसे जो मध्यम भागवत होता है वो भेद करता है, उसे भेद करना चाहिए। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये श्लोक यहां लिखा हुआ है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ईश्वरे तदिने तत् ईश्वरे तदिने तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वह भगवान के समस्त भक्तों को निष्ठावान का निष्ठावान मित्र होता है, वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है जो अबोध हैं, और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष रखते हैं। तो ये चार वर्ग हुए। पहला वर्ग कौन सा है? ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो ईश्वर के प्रति ईश्वरे क्या भाव होता है? प्रेम। तो जो भक्त होते हैं, जो मध्यम भक्त होता है, वो भगवान से प्रेम करता है, भले उसका प्रेम उत्तम भागवत जितना तीव्र न हो, फिर भी थोड़ा प्रेम तो है ही भगवान के प्रति। दूसरा वर्ग कौन सा है? तद अधीनेशु, तद अर्थात उनका, भगवान का, ईश्वर का। अधीनेशु मतलब उनका जो कि भगवान के अधीन है, तो उनके प्रति कैसी भावना रखता है मध्यम भागवत? मैत्री, मैत्री की भावना होती है। और तीसरा वर्ग कौन सा है? बालिशु, बालिश, बालिशेशु, जो अज्ञानी हैं परंतु मासूम है, तो उनके प्रति कृपा, कृष्ण कथा उनको देना, कृष्ण नाम उनको देना, कृष्ण भक्ति की ओर उनको ले आने का प्रयास करना, तो ये मध्यम भागवत का कार्य होता है। एक बालिश व्यक्ति के समान, जो अज्ञान है परंतु मासूम है, ईर्ष्यालु नहीं है। और चौथा वर्ग है द्विषत्सु, जो ईर्ष्यालु है, अज्ञानी है और ईर्ष्यालु भी है, तो उसकी उपेक्षा करना, अर्थात उसका उसका संग नहीं करना। तो बालिश और द्विषत्सु, इन दोनों में अंतर यह है कि हालांकि दोनों अज्ञानी हैं, परंतु जो बालिश है वो मासूम है और ईर्ष्यालु नहीं है। और दूसरे ओर जो द्वेषी व्यक्ति है, उसके हृदय में ईर्ष्या होने के कारण मध्यम भागवत उसका संग नहीं करता। तो ये मध्यम भागवत की पहचान दृष्टि होती है। तो ये भी जानना चाहिए, जो प्रचारक होते हैं वो मध्यम भागवत के स्तर में होते हैं, जो प्रचार करते हैं, लेकिन मध्यम भागवत के प्रचार, मध्यम भागवत के वर्ग में भी बहुत ये लंबी श्रेणी है, चौड़ी श्रेणी है। जो शुरुआत में है वो भी प्रचार कर सकते हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो भी प्रचार कर रहे होते हैं। तो चौड़ाई लंबाई इस वर्ग की बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रचार तो कोई भी कर सकता है। एक बार किसी को पता चल गया कि कृष्ण परम सत्य है और कृष्ण का भक्त हमें बनना चाहिए, और थोड़ी बहुत श्रद्धा भी हो जाती है उसको, तो प्रचार कर सकता है। और दूसरी ओर ऐसे भी भक्त होते हैं जो भले उत्तम भागवत न हो, इतना शुद्ध प्रेम न पाए हो अभी तक, परंतु फिर भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे मध्यम भागवत भेद करते हैं, और साथ साथ में कभी प्रचार करते हैं कभी नहीं। कभी ऐसे होता है कि जो उत्तम भागवत होते हैं उनको मध्यम भागवत का कार्य करना पड़ता है, लोगों की भलाई के लिए उनको दृष्टि बदलनी पड़ती है। तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे शरद ऋतु में कभी कभी पहाड़ों से जल आता है, कभी नहीं आता है, तो कभी कभी ऐसे जो उत्तम भागवत होते हैं वो कभी कभी कहते हैं, बात करते हैं, कभी मौन रखते हैं, कभी बात नहीं करते। तो मध्यम भागवत ऐसे दुष्टों से दूर रहते हैं। कभी कभी जो उत्तम भागवत होते हैं वो दुष्टों के साथ भी जाकर कभी प्रेम की बात करते हैं, और कभी कभी ऐसी कड़क बात कुछ बोल देते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता, हम उसका ऐसे सर्वनाश होगा उसको हम, या वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, उसके मुख में हम प्रहार करेंगे, ऐसे हम बहुत चीजें कह देते हैं। तो आचार्य ने हमें चेतावनी दी है, ऐसे बात नहीं करना, वो उनके स्तर की बात है, वो उनको करने दो, लेकिन आप ऐसे बात नहीं करना, दूर ही रहना उनसे, दुष्ट है भले लेकिन दूर ही रहना। वो अपने भाव में कहते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं, वो भाव में आके ऐसे कह देते उनके स्तर से, लेकिन हमें ऐसे नकल नहीं करना चाहिए, ना उद्धव की तरह बनना चाहिए, नकल करनी चाहिए, न हमें कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर की नकल करनी चाहिए। जो दुष्ट हैं, जो नास्तिक हैं, ईर्ष्यालु हैं, उनसे दूर ही रहना पड़े, थोड़ा दूर से नमस्कार करके बस चले जाओ, ऐसे होना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी, उत्तम भागवत जो होते हैं, वो कभी कभी आते हैं इस स्तर पे करुणा के कारण, और कोई विवेक उनको अवश्य करना पड़ता है। और ऐसे वर्णन करने के बाद फिर आगे, अब क्योंकि समय कम है, संक्षेप में ही कर रहे हैं चर्चा। अब अगले श्लोक में कनिष्ठ भागवत, इनका लक्षण क्या है, तीसरे श्रेणी। अब जरा उसको बोर्ड को घुमाएंगे। इसमें कनिष्ठ भागवत का वर्णन है। अर्चायाम एव हरये, पूजाम यः श्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। अर्चायाम एव हरये, पूजह यह श्रद्ध यही हते, अर्चा विग्रह की सेवा करता है श्रद्धा से, अर्चना विधि का पालन करता है, थोड़ी सी श्रद्धा है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है, यदि वो अन्यों की तरह है, भक्तों की तरफ और जो अभक्त है उनके भी प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं जानता, वो प्राकृत भक्त या भौतिकतावादी भक्त कहलाता है, कनिष्ठ भागवत कहलाता है। दूसरे शब्दों में शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है व्यवहार के ऊपर, यदि हम ठीक से व्यवहार अन्यों के प्रति करना नहीं जानते तो इसका मतलब है कि हमारे दृष्टि ठीक नहीं है, और दृष्टि ठीक नहीं है इसका मतलब है कि हम भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़े हुए हैं। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकल करें, परंतु हमें पद चिन्हों में चलना चाहिए महान भक्तों का, प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसे होता है, उस प्रकार से हमें भी व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कनिष्ठ भागवत जो होते हैं उनके कई लक्षण होते हैं। भगवान के सर्वव्यापी होने का ज्ञान उनको नहीं होता, भगवान है, भगवान की शक्ति है जो सर्वव्यापी है, नहीं मालूम उनको। उनको उनका सोच ऐसे होता है कि भगवान केवल मूर्ति के रूप में मंदिर में है, बस मैं और मेरा भगवान, मैं पूजा कर रहा हूं, बस मुझे लाभ होगा, बाहर और कोई भगवान नहीं है कहीं, ये उनकी दृष्टि होती है। जो वैष्णव, सच्चे वैष्णव होते हैं, जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उनकी दृष्टि ऐसे नहीं होती। परंतु ये विशेष करके ऐसे लोगों की चर्चा की गई है जो प्राय भक्त है परंतु नहीं भी है, उनकी उनकी श्रद्धा कोमल है, दृष्टि दृष्टि में बहुत त्रुटियां हैं, तो अपने मंदिर आदि या निवास जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी है बस भगवान वही है, उनको ऐसे लगता है, तो ये कनिष्ठ भागवत कहलाते हैं। दूसरी बात, ऐसे अर्चा विग्रह की सेवा करने वाला व्यक्ति जो होता है इस भावना से, उसे लगता है कि मेरे जैसा और कोई भक्त है नहीं, ना हो सकता है बाहर, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा घमंड भी आ जाता है कि मुझसे ज्यादा कोई पुण्यवान होगा, कोई धार्मिक होगा जो भगवान को जान सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, उसकी विचारधारा ऐसे रहती है। तीसरी बात, उसकी दृष्टि भौतिक होने के कारण वो भौतिकतावादी लोगों का संग भी करता है और उसमें कोई उसको दोष दिखाई नहीं देता कि मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए इसलिए भौतिक लोगों से संग कम करना चाहिए, इसके मन में ऐसे विचार नहीं आता। भौतिक लोगों की भी प्रशंसा करेगा, थोड़ा बहुत भोग में भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए उसके चरित्र में और उसकी दृष्टि में और थोड़ा दोष होता है। साथ साथ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी बताते हैं कि जो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, भगवान से संबंधित ज्ञान है ऐसे कनिष्ठ भागवत का, केवल अर्चा विग्रह से सीमित होता है, बस यही भगवान है, परंतु वो नहीं जानता कि भगवान अपने आप के उपासक या अपने भक्तों के सामने पांच प्रकार के रूपों में प्रकट हो सकते हैं। एक को कहते हैं पर, पर अर्थात भगवान का मूल रूप जो कि गोलोक वृंदावन में निवास करता है, वो विरला ही किसी भक्त के सामने प्रकट हो सकते हैं। जैसे वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो अपना पर रूप वो प्रकट कर रहे थे। फिर दूसरा है व्यूह, व्यूह अर्थात भगवान के चतुर्व्यूह रूप जो होते हैं अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न इत्यादि, नारायण स्वरूप भगवान के जो वैकुंठ में निवास करते हैं। फिर भगवान का तीसरा रूप है वैभव, जो अपने लीला करने के लिए भगवान यहां इस धरातल में या भौतिक जगत में भगवान रूप स्वीकार करते हैं। चौथा है अंतर्यामी या परमात्मा, जो हरेक के हृदय में स्थित होते हैं। और पांचवा रूप जो भगवान का है, जो वो भक्तों के उद्धार के लिए स्वीकार करते हैं, वो है भगवान का अर्चा विग्रह। तो ये पांच रूप हैं। पहला रूप है पर अर्थात मूल रूप भगवान का गोलोक वृंदावन में निवास करने वाले। दूसरा रूप व्यूह, उनका नारायण स्वरूप। तीसरा वैभव, जो उनके लीला रूप है जो भौतिक सृष्टि में लेते हैं, प्रकट होते हैं। चौथा अंतर्यामी या परमात्मा, जो हर एक प्राणी के हृदय में स्थित रहते हैं। और पांचवा अर्चा विग्रह। अब देखिए अर्चा विग्रह कौन से पदार्थों से बनी हुई है, पत्थर से या लकड़ी से, मिट्टी से, जैसे जैसे विग्रह बनते हैं। तो यहां पत्थर के बने हुए हैं अर्चा विग्रह, हैं तो भगवान से अभिन्न परंतु बने हैं पत्थर से। तो अर्चा विग्रह में भी भगवान अपने अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं। और ये अंतर्यामी जो हैं, ये कहां से आते हैं, भगवान के वैभव रूप से आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु से आते हैं। और ये वैभव रूप कहां से आते हैं, व्यूह से आते हैं, उनके नारायण स्वरूप से आते हैं। नारायण स्वरूप कहां से आते हैं, परस्वरूप से आते हैं। ऐसे एक श्रृंखला है जिसको सच्चा भक्त देख सकता है, परंतु जो कनिष्ठ भागवत होता है वो केवल विग्रह को ही देखता है और विग्रह के सिवाय कुछ नहीं जानता। अन्य जो भगवान के रूप हैं उनके बारे में वो नहीं जानता। और एक बात जो कनिष्ठ भागवत के लक्षण है वो ये है कि वो भगवान के भक्तों के गुणों को समझ नहीं सकता कि भगवान के भक्त कितने गुणवान हैं, कि हमारे सम्मान के योग्य हैं, वो नहीं समझता। नहीं समझता है कि भगवान की और जो सामग्री है, उनके उनका धाम है इत्यादि, ये भी हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा कनिष्ठ भागवत भक्तों के साथ मित्रता के संबंध को स्थापित करने का महत्व नहीं जानता। वो अपने दुनिया में ठीक है वो अपने अर्चा विग्रह की सेवा करता है, कोई दक्षिणा मिलती है, इधर उधर से दक्षिणा मिल जाती है, अपने संसारी भोग में लगा हुआ रहता है, है मेरे ठाकुर जी है मेरे पास, करते हैं। लेकिन भगवान को अपना एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये है तीन श्रेणियां भागवत के। तो महाराज निमि के प्रश्न के उत्तर में श्री हवि इन्होंने ऐसे तीन तरह के भागवतों का वर्णन किया है, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और कनिष्ठ भागवत। तो जो सतत यहां भक्तों के संग में आते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया है कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करना है, जो भक्तों से प्रेम और मित्रता रखने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करने का प्रयास करते हैं, अभक्तों से थोड़ा दूर ही रहते हैं जितना हो सके, और जब भी कोई ऐसे मासूम अज्ञानी मिलते हैं उनको कृष्ण के बारे में बताने की चेष्टा करते हैं, और जो भगवान के प्रति बहुत सेवा करते हैं, नाम जप कीर्तन आदि करते हैं, वो मध्यम भागवत कहलाते हैं। तो हमें कम से कम मध्यम भागवत बनने का प्रयास करना चाहिए। और मध्यम भागवत हो या कनिष्ठ भागवत हो, यदि वो भक्तों का संग करे, कनिष्ठ भागवत भी मध्यमों का संग करे, तो वो भी मध्यम बन सकता है। मध्यम भी आपस में संग करेंगे और उत्तम श्रेणी के भक्तों का संग करेंगे तो उनकी भी प्रगति होती जाएगी। इसलिए भक्तों का संग जो है ये प्रगति का एकमात्र उपाय है। इसलिए सबको चाहिए कि वो अधिक से अधिक भक्तों का संग स्वीकार करे और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है, एक या दो प्रश्न? हाँ, प्रश्न ये है कि कनिष्ठ भक्त क्या शांत रस में होता है? नहीं नहीं, ये रस की बात जब होती है तो ये तो ऊपर के बहुत ऊंचा स्तर होता है ये। हाँ, ये शांत रस, रस की बात कब कर सकते हैं? जब व्यक्ति को भौतिक दुनिया से बिल्कुल निरासक्ति हो गई है, भगवान से आसक्ति हो गई है, तब प्रेम की अवस्था में ये रसों की बात आती है। ये कनिष्ठ भागवत इतना है, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, अभी तक भौतिक दृष्टि काफी है उसके अंदर। हाँ, माइक है क्या?
हरे कृष्ण। जैसे आप बता रहे थे कि सत्यवान खान और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चल रही, जिस व्यक्ति को देख के भगवान की याद आती है वो वैष्णव है, तो हम सब एक दूसरे को देखते हैं तो पहला कभी बोल बोलते हैं, तो भगवान का नाम याद आया ना, तो कैसे इसमें थोड़ा
फिर क्या हम भी महाभागवत हो गए? ये प्रश्न है। नहीं, इसलिए हम वास्तव में तिलक आदि धारण करते हैं ताकि सामने वाला आदमी देख के तुरंत सोचे कि ये हरे कृष्ण वाला है, तो कृष्ण मन में आएगा ही ना, हरे और कृष्ण तो बोलेगा वो व्यक्ति। ये हम उनको याद दिला रहे हैं। परंतु यदि हमारे अंदर कोई चिन्ह नहीं होते, न तिलक होता, न कंठी माला होता, न वैष्णव पोशाक होता, न कुछ, फिर भी ये कोई देख के हमें हरे कृष्ण कहता नहीं कहता। लेकिन महाभागवत ऐसे होता है कि उसके बाहरी लक्षण कैसे भी हो, पोशाक कैसे भी हो, बस वो ऐसे उसके अंदर भाव रहेगा कि सामने वाला आदमी कृष्ण को याद करेगा या कृष्ण का नाम लेगा, वो प्रेरित होगा कृष्ण के शरण में जाने के लिए। यह तात्पर्य है, ठीक है। और प्रश्न यह है, यह है कि ये महाभागवत की जो दृष्टि है ये कब उत्पन्न होती है, भाव के स्तर में या प्रेम के स्तर में? ये भाव के स्तर में भी आ जाती है, क्योंकि भाव का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है और इस स्तर में भी व्यक्ति भगवान को आमने सामने देखने के लिए योग्य होता है। एक उत्तम भागवत, दूसरा प्रश्न है कि मध्यम भागवत के स्तर में कैसे उसकी दृष्टि को बदलता है, क्योंकि उसकी कृपा होती है, उसकी करुणा की भावना होती है, दूसरों के दुखों को वो सहन नहीं कर सकता इसलिए। तीसरा प्रश्न है कि यदि हम मध्यम भागवत तो मध्यम भागवत और उत्तम भागवत की जो दृष्टि होती है, क्या हम अपने प्रयास से उसको प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य प्रयास की आवश्यकता तो है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु कृपा भी चाहिए, दोनों चीजों चाहिए हमें। अपना प्रयास करना चाहिए और साथ साथ भक्तों की और भगवान की कृपा भी चाहिए। वो कौन सा स्तर है जिसमें मध्यम भागवत की दृष्टि आती है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग स्यात् भजन क्रिया। वैसे बहुत शुरुआत से मध्यम स्तर, मध्यम भागवत का स्तर शुरू हो जाता है, भजन क्रिया से ही शुरू हो जाता है, साधु संग से। जब कोई साधु संग करना शुरू कर देता है, उसे पता चलता है भजन क्रिया करना शुरू कर दिया, तो मध्यम का स्तर शुरू हो गया। भाव तक इतना ऊंचा, तो कितना लंबा चौड़ा है ये मध्यम भागवत का स्तर। भाव भक्ति पहुंचने तक उसके पहले आसक्ति, रुचि, निष्ठा, ये सब बहुत ऊंचे स्तर हैं। तो मध्यम भागवत जो है, एक बार कोई निष्ठावान भक्त बन गया तो वो मध्यम भागवत जानना चाहिए, लेकिन मध्यम भागवत और बहुत ऊंचे तक है। आपने महाभागवत के जिस भाव का वर्णन किया, क्या वही उद्दीपन भाव है? अगर नहीं तो उनमें क्या अंतर? अरे बहुत ऊंचा प्रश्न कर दिया इतना ऊंचा प्रश्न, ये सब बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत ऊपर की बातें हैं, इनकी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। बस इतना भगवान के प्रति हम आकर्षण जागृत करने का प्रयास करें। जो कनिष्ठ भक्त होता है, क्या कुछ समय के बाद अपने आप उसमें बदलाव आता है, वह प्रगति करता है, या उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे अलग प्रयास करना पड़ता है? वही प्रश्न, प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास ऐसे होता है कि उससे आगे बढ़े हुए जो भक्त है उनका संग करना। देखिए, केवल भक्तों का संग नहीं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए विशेष रूप से जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं भक्ति में, तब हम आगे बढ़ेंगे ना। हालांकि अपने स्तर पर होने वाले भक्तों के संग की भी आवश्यकता होती है, वो हमें बचा के रखेगी, कम से कम उस स्तर तक हम रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे हम। परंतु आगे बढ़ना है तो और आगे बढ़े हुए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, अंतिम प्रश्न।
ये जो श्लोक है, योग मन पश्यति सर्वथा, ये भगवत गीता के छठे अध्याय में आता है, जो अष्टांग योगी जो अपना प्रैक्टिस करता है, तो वो परमात्मा को देखता है क्योंकि पश्यति का अर्थ प्रॉपर लिखते हैं कि सीज, तो क्या वो परमात्मा को देखता है क्योंकि पिछले अध्याय में ज्ञानी का दर्शन बताया कि
हाँ कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जो ध्यान योगी होते हैं वो अपने अंतःकरण में भगवान को कमल आसन के ऊपर विराजमान देखते हैं। जैसे नारद मुनि को हुआ था ना अपने पिछले जन्म में, जब वो लड़के थे, बच्चे थे, वो उस समय भगवान का ध्यान हुआ अंतःकरण में, परंतु वो ध्यान फिर टूट गया। तो वो ध्यान भी, वो भगवान का दर्शन भी हमेशा के लिए नहीं रहा, वो थोड़े समय के लिए आया फिर वो ध्यान टूट गया। मतलब ऐसा ध्यान योगी जब और भगवान, फिर वो भक्त बन जाता है, फिर उसका परिवर्तन एक योगी से बदल के भक्त के श्रेणी में वो व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो अब कथा विराम यही करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।